जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ
La 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 la.
భువనమంగళ హరినామ సంకీర్తన కీ శ్రీల ప్రభుపాద మహారాజ కీ గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవతం ఇతాయ గౌర ప్రేమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నిష్ఠకీ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 10 అధ్యాయ 7 శ్లోక క్రమాంక 7. అదశయానస్య శిశో అన అల్పక ప్రవాల మృదు అంగ్రిధతమ వ్యవర్తత విధ్వంస్త నానా రస కుప్య భాజనం వ్యతస్త చక్ర అక్ష విభిన్న కుబరం. అధశయానస్య శిశోర కల్పక ప్రవాల మృదుంగ గృహతం వ్యవర్తత విధ్వంస్త నానారస కుప్య భాజనం వ్యతస్త చక్రాక్ష విభిన్న కుబరం. అధశయాన శశిశోరన కల్పక ప్రవాల మృదం గృహతం వ్యవర్తత విధ్వంస్త నానారస కూప్య భాజనం యత్తశ్చ చక్రాక్ష విభిన్న కుబరం. అఘశయాన శశిశోరన కల్పక ప్రవాల మృదం గృహతం వ్యవర్తత విధ్వంస్త నానారస కూప్య భాజనం యతస్త శకరాక్ష విభిన్న కుబరం. బోలే अघोषयानस्य शिशुरो न कल्पकः प्रवालमृदङ्गरितं व्यवर्तत विद्वांस्तनानारसकोप्यभाजनम् यतास्तशकराक्ष विभिन्नकुबरम् अधशयानस्य शिशरनकल्पकः प्रवालमृदं ग्रहतं व्यवर्ततम् विद्वंस्तनानारसकोप्यभाजनम् यतस्तशकराक्ष विभिन्नकुबरम् माताय अघशयानस्य गाड़ी गाड़ी सकड़े के नीचे सोए शिशो बालक का अना गाड़ी अल्पक अधिक बड़ा नहीं प्रवाल नई पत्ती की तरह मृदु अंग्री हतमा उनके सुंदर मुलायम पांव के साथ मारी गई व्यवर्तत उलट कर गिर गई विध्वंसत बिखर गई नाना रस कुप्य विभाजन धातुओं के बने बर्तन यस्तस्त इधर उधर हट गए चक्र अक्ष दोनों पहिए तथा धरी विभिन्न टूटे हुए कुबरम चकट का कुबर जिससे जुआ लगा हुआ रहता है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में चकड़े के नीचे लेटे हुए थे और यद्यपि उनके पांव कोपलों की तरह कोमल थे किंतु जब उन्होंने अपने पांवों से चकड़े पर लात मारी तो वह तेजी से उलटकर टूट फूट गया। पहिए धुरी से विलग हो गए और बिखर गए और गाड़ी का लट्ठा टूट गया। इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर चितर गए। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है, इस प्रकार की है कि जब कृष्ण अत्यंत सुकुमार थे तो उनके हाथ पांव पोपलों के समान थे, फिर भी उनके पांव के छूने से ही गाड़ी खंड खंड हो गई। ऐसा उनके लिए बिल्कुल असंभव था और उसमें उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। अपने वामन अवतार में भगवान को अपने पांव को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाना पड़ा था कि जिससे वह ब्रह्मांड के आवरण में प्रवेश कर सके। और उसी तरह जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा तो उन्हें नरसिंह देव का विशेष स्वरूप धारण करना पड़ा था, किंतु कृष्ण अवतार में भगवान को इतनी शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ी। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। किंतु कृष्ण अवतार में भगवान को इतनी शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ी, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। अन्य अवतारों में भगवान को देश तथा काल के अनुसार कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ी, किंतु इस अवतार में उन्होंने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया, इसलिए सकड़ा चूर चूर हो गया और उनके जोड़ टूट गए और उसके ऊपर रखे धातु के बर्तन भांडे चितर गए। वैष्णव तोषणी की टीका में लिखा है कि यद्यपि सकड़ा बच्चे से ऊंचा था किंतु बालक आसानी से पहिए छू सकता था और इतना ही पर्याप्त था असुर को पृथ्वी पर नीचे फेंकने के लिए। भगवान ने एक ही साथ असुर को पृथ्वी पर फेंका और चकड़े को तोड़ डाला। ओम ज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांसाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यास्ताहं प्रपद्ये। सूर्यशतसमकान्त्यरुणवसना सुबलितप्रकाण्डदेह कमललोचन। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। भगवान की बाल लीला का चरित्र का वर्णन हो रहा है इधर दसम स्कंद और सातवा अध्याय पर चल रहा है भी व्याख्या। तो छठे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने पुतना वध का वर्णन किया और वर्णन सुनते सुनते श्री परीक्षित महाराज को इतना आनंद आ गया कि कृष्ण कथा सुनने में और लालसा बढ़ गई और साथ साथ में सुखदेव गोस्वामी को भी इतना आनंद आया और वो भी स्मरण करते करते परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि शायद वो ध्यान मग्न होकर कथा बंद कर देगा, बंद कर देंगे सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए जब पुतना व्रत का प्रसंग सुनाया तुरंत परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया या लालसा व्यक्त की, येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्मण्येभ्यः मनोज्ञानं च न प्रभो। हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने जिस 6 दिन की आयु में भगवान कृष्ण ने श्याम सुंदर ने पुतना का वध किया, इसी तरह अन्य लीलाओं का भी आप वर्णन कीजिए कि आगे कौन कौन असुर का वध किया और किस किस प्रकार की भगवान ने लीला की, उस सभी कथाओं का या सभी लीलाओं का वर्णन कीजिए। इसी प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न होकर इस 7वें अध्याय का प्रसंग शुरू करते हैं और 7वें अध्याय में 3 प्रसंग दिया गया है। प्रथम षट्टासुर का वध, दूसरा त्रिगुणावत का वध और चौथा तीसरा भगवान ने अपने जमाए लेते समय माता यशोदा को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। इस 7वें अध्याय में इन 3 प्रसंगों या 3 लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो इसी तरह प्रथम शुरुआत करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब भगवान श्याम सुंदर 3 मास के हुए तब करवट बदलना शुरू किया। बालक 3 मास में करवट बदलता है, वैसे ही पहले ऐसे सोता है लेकिन 3 मास के प्राय जब 2.5 मास या 3 मास करीब आता है तब वो करवट बदलता है। तो इस करवट बदलने का वो प्रसंग या विधि या संस्कार भी माता पिता वो प्रेम से उत्सव मनाते हैं। तो यशोदा मैया को भी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ उत्सव मनाने के लिए। तो भगवान ने जब करवट बदला तो माता यशोदा ने सभी व्रजवासियों स्त्रियों को एकत्रित किया और कहने लगे कि मुझे भी इस उत्सव का मनाना है। तब उस उत्सव में मनाने के लिए तैयारी कर रही थी और साथ साथ में भगवान श्याम सुंदर को अपने गोद में लेकर स्तनपान कराया। स्तनपान करा के देखा यशोदा मैया ने कि लाला को नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो नींद आते वो सो गए और साथ में यशोदा मैया भी सो गए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं आगे के श्लोक में जब श्रवण किए, जो स्नेहाल माता पिता होते हैं जो स्नेहपूर्वक अपने बच्चे को पालन करते हैं और जब तक बच्चा संतुष्ट नहीं होता तब तक उससे दूर नहीं जाते हैं। तो जब भगवान श्याम सुंदर को जब नींद आने लगी तो माता यशोदा भी उस स्थान पर सो गए और पूर्ण रूप से जब श्याम सुंदर सो गए तब माता यशोदा यहाँ से हट गई और अन्य कार्यों में लग गई। जो सभी इस प्रसंग में आने वाले थे उन्हें स्वागत करने के लिए या तैयारी करने के लिए, तो उस भगवान ने श्याम सुंदर को माता यशोदा ने कहाँ सुलाया था, एक सकट के नीचे, एक बैलगाड़ी के नीचे, वहाँ थोड़ा छाव आया था। प्रांगण में वो अवसर मना रहे थे, उत्सव मना रही थी यशोदा मैया, तो प्रांगण में आंगन में नंद बाबा के आंगन में वो सकट था, उस सकट के नीचे उस बिछाकर वहाँ छोला दिया श्याम सुंदर को और अपने कार्य में वो लग गए। तो जब अपने कार्य में लग गए यशोदा मैया तो श्याम सुंदर कृष्ण को नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद वो रोने लगे, लेकिन यशोदा मैया उस तैयारी में लगी हुई थी उत्सव की तैयारी में और स्वागत में, तो उसको आवाज़ सुनाई नहीं दिया लाला का। तो लाला का आवाज़ नहीं सुनाई दिया तो भगवान कृष्ण को या लाला को क्रोध आ गया और सोचने लगे मन में कि मैं गोलोक धाम छोड़कर इस व्रज में आया हूँ, पूरे ब्रह्मांड का नायक हूँ, पूरे सृष्टि का पालन करता हूँ और इस व्रज में आया हूँ वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए और मुझे भूख लगी और माता यशोदा सुन भी नहीं रहे हैं, मैं रो रहा हूँ कभी से। तो माता यशोदा तो कार्य उस उत्सव में कार्य में लगी हुई थी और भगवान कृष्ण को या श्याम सुंदर को क्रोध आ गया। थोड़ा क्रोध आने के साथ उनकी नज़र उस चकट पर पड़ी जो नीचे सुलाए हुए थे। तो उस चकट पर नज़र पड़ी तो भगवान ने सोचा कि इसी अवसर को लाभ लेते हुए या उठाते हुए उस चकट में एक असुर आकर चुप गया था। या श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि असुर निवेश, उस चकट में असुर का निवास था। और कोई कोई कहते हैं कि उस असुर ने ही वो शक्तासुर ने वो रूप धारण किया था, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि सवुर ब्रह्मांड पुराण से कोट करते हुए कहते हैं कि उस शकट में उस बैलगाड़ी में असुर आकर छुप गए थे। वैसे ही वो असुर जो है वो योग शक्ति से सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। जिस तरह कोई भूत होता है वो कहीं वृक्ष में उनका वास हो जाता है। और हम देखते हैं भागवतम में, भागवतम के महात्म बताते हुए पद्म पुराण से बताते व्यासदेव जो गोकर्ण थे उनके भाई धुंधकारी वो भी एक बांस में आकर कथा सुन रहे थे। तो ऐसे वो निवास कर सकते हैं भूत या असुर। तो उसी तरह उस शकट में उस असुर ने निवास किया था जो कंस के द्वारा भेजा हुआ था। तो भगवान की नज़र उस शकट पर गई और वो सोचने लगे कि उसका भी उद्धार करना है। वो रो रहे थे साथ में, तो यशोदा मैया भी आवाज़ सुन नहीं रही थी। तो वो भी सोचे कि अगर मैं कुछ ऐसा हरकत करूँ या कुछ ऐसा कार्य करूँ ताकि सबकी नज़र इधर आ जाए, और ये सबसे बड़ा अवसर है। अगर शकट को मार दिया जाए, उसका वध किया जाए और उसको पलट दिया जाए तो सब ब्रजवासियों का या माता यशोदा का सबका ध्यान इधर आ जाएगा। तो इसी तरह भगवान कृष्ण ने वो सोचा और रुदन करने लगे। रूपा तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान तो शकट के नीचे सोए हुए थे, तो उनका लात उनका पांव कैसे वहां पहुंचे, वो तो एकदम शिशु थे 3 साल 3 महीने के, और उनका चरण एकदम कोमल थे। आज के श्लोक में है एकदम नए नए पत्ते जिस तरह वृक्ष के निकलते हो एकदम कोमल, या कमल के पंखड़ियों की तरह उनका चरण भगवान के थे, तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता। लेकिन जीव गोस्वामी कहते कि उनके चरण उस पहिए के साथ लग गया। जैसे ही वो पहिए के साथ भगवान चरण का टच हुआ, टच होते हुए तुरंत वो सकड़ा उलट गया। उलटते ही पूरा वो बिखर बिखर हो गए। एक एक जड़ जो थी उनका जॉइंट वो सब अलग अलग हो गए। उनका पहिया अलग हो गया, उनकी धरी अलग हो गई, उनके आरे थे वो सब अलग हो गए, एक एक पार्ट अलग हो गए पूरे चकट का। और उस चकट में कई धातु के बर्तन थे और ये बर्तन भी इधर उधर हो गए, सब बिखर गए। और एक आचार्य लिखते हैं कि उस बर्तन में इस रस लिखा है, इस श्लोक में रस आया है, रस शब्द, तो वहाँ धातु शब्द प्रयोग किया है। अनेक धातु के बर्तन थे, लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि उस बर्तन में अनेक रस भरे हुए थे, जैसे दही दूध घी आदि। उस शकट में उस बर्तन में कई रस भरे हुए थे, दही दूध घी आदि जो गाय का होता है वो। तो उस रस से भरा हुआ वो सारे बर्तन टूटकर इधर उधर बिखर गए। और बिखरने के बाद जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार शकट का पूरा उलट कर पूरा बिखर दिया जो आज के श्लोक में है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि यही कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान 3 महीने के हैं और पूरे शकट को टस होते हुए तुरंत वो उलट गया। उनको कोई शक्ति का प्रयोग करना नहीं पड़ा भगवान कृष्ण को। और अन्य अन्य अवतारों में प्रभुपाद 2 अवतारों की इधर उल्लेख करते हैं, एक वामन भगवान का और एक नरसिंह भगवान का। जब वामन भगवान का भगवान ने अवतार धारण किया तब कुछ शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। उनको ब्रह्मांड का आवरण भेदना था, तब उनको पांव अपना चरण लंबा करना पड़ा। और दूसरा नरसिंह भगवान, जब हिरण्यकशिपु का वध करना था तब नरसिंह अवतार का नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान है उनको कोई शक्ति या कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। केशव धृत दशविध रूप जय जगदीश हरे, जयदेव गोस्वामी कहते हैं वही केशव दस विध जो दस अवतार मुख्य है वो रूप धारण करते हैं, लेकिन वही मुख्य भगवान कृष्ण है जो स्वयं कृष्णस्तु स्वयं भगवान। तो उनको कुछ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार भगवान का शरण कोमल कोमल होते हुए भी उस चकट को टच करते ही पूरा चकट टूट गया और उससे अंदर जो भी बर्तन थे उसमें जो भी रस भरा था सब बिखर गए। तो भगवान चाहे कितने भी आयु के हो या कितने की उम्र के हो उसको कोई बाधित नहीं होता, चाहे 6 दिन का हो या 3 महीने के हो या 125 साल के हो, भगवान हर हमेशा अपनी शक्ति को प्रदर्शन करते हैं। आगे वर्णन सुना हमने, 6 दिन के भगवान थे उसी समय उस पुतना का वध कर दिया। इधर 3 महीने के थे भगवान कृष्ण और उसने चक्रासुर को मारकर पूरा बैलगाड़ी जो बहुत बड़ा था उस टस होते वो पलट कर पूरे बिखर गए। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण छोटे से शिशु के रूप में हो या 125 साल के महाभारत के युद्ध में हो, सभी समय पर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते, उसी को भगवान कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान इसी प्रकार अपनी लीला प्रदर्शन करते हैं। और एक समय श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में वर्णन आता है 9वें अध्याय में, जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान नर नारायण का तपस्या की, तपस्या करने के बाद जब नर नारायण भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए तब तो मार्कंडेय मुनि ने मुनि से कहा आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो मार्कंडेय मुनि तो भगवान का दर्शन करके आनंद विभोर हो गए और कहा कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है और आपका प्रलय, आप किस तरह इस भौतिक जगत का प्रलय करते हैं वो उसका मुझे दर्शन करना है। तो भगवान ने मना कहा या पहले उसमें कुछ सार नहीं है, आप मत दर्शन कीजिए। नहीं, मार्कंडेय मुनि ने कहा नहीं मुझे वो दर्शन करना है, क्योंकि सृष्टि का तो सर्जन होते हुए देख सकते हैं किस प्रकार वृक्ष होता है बड़ा होता है, उस प्रकार किस प्रकार बच्चा जन्म लेता है, सृष्टि का निर्माण का दर्शन कोई भी कर सकता है लेकिन प्रलय का कोई नहीं कर सकता है। तो उस मार्कंडेय ऋषि ने इच्छा की या उनकी मन में इच्छा हुई कि मुझे भगवान का प्रलय का दर्शन करना, उनकी माया का दर्शन करना, किस तरह इस माया जगत प्रलय होता है। तो भगवान नरनारायण प्रसन्न होकर उनको उसी समय ऐसा वातावरण सर्जन करते हैं कि तुरंत तूफान आने लगता है और तूफान के साथ बारिश, जोर से बारिश आने, एक साथ बहुत तूफान और एक साथ साथ में बहुत बारिश, इतना बारिश होता है, इतना बारिश होता है कि पूरा ब्रह्मांड जल से भरने लगता है। और इतना तूफान तूफान के साथ बारिश आते आते पूरा ब्रह्मांड जल से भर जाता है और जल से भरने के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है। और डूबने के साथ मार्कंडेय ऋषि देखते हैं वो अकेले ही जल में तैरते हैं, जल में तैरते तैरते वो तो घबराने लगते हैं और सोचने मैंने ऐसी इच्छा क्यों व्यक्त की और मेरी आयु, उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था वो लंबी आयु तक लंबा जीवन व्यतीत कर सकता है या जी सकते हैं। तो उस व्यक्त करते हैं मार्कंडेय ऋषि कि मुझे ऐसा वरदान क्यों मैंने लिया कि मैं ज़्यादा समय तक जीता रहूं, अगर मैंने ऐसा वरदान नहीं लिया होता तो इसी समय मैं अपना प्राण त्याग देता। तो उतना घबरा गए वो, पानी में सिर्फ पानी ही पानी दिखता था और कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और तैरते तैरते वो जा रहे थे तो एक स्थान आया जहाँ थोड़ा दीप था पहाड़ जैसा, उस दीप में आकर वो थोड़ा सांस उनका रुका और थोड़ा शांति अनुभव किया। तो उस दीप में आकर वहाँ रुके और थोड़ा शांति महसूस किया। तब उनको भूख भी लगा था, बहुत सालों से वो पानी में घूम रहे थे इधर उधर उधर, तो भूख लगा तो चिंतन करने लगे कि भी भूख से कैसे बचा जाए। तब उनकी इच्छा देखते हुए स्वर्ग भगवान वैकुंठ से सूर्य गाय भेजते हैं उसी स्थान पर, उस द्वीप पर, और एक वट वृक्ष रहता है उस द्वीप में। तो इस वट वृक्ष के नीचे उस द्वीप में मार्कंडेय मुनि रहते और वहाँ सूर्य गाय आती है और सूर्य गाय का दूध वो पीते हैं मार्कंडेय ऋषि। तो इस सूर्य गाय का दूध पीने से उनको संतुष्टि प्राप्त होती है और संतुष्टि प्राप्त करने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि मुझे इस अभी बसाइए इस जलाकार ब्रह्मांड से। तब प्रार्थना करते हैं तब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। किस रूप में प्रकट होते हैं तो इस 12वें स्कंद में 9वें अध्याय में 31 नंबर का श्लोक है, उसमें मार्कंडेय ऋषि कहते हैं तस्मिन् पृथिव्या कुकुदमी प्ररूढ़ वटम च तत्पूर्ण पुटे शयानम। उस द्वीप में भगवान का उनको दर्शन हुआ। किस रूप में दर्शन हुआ? एक वट वृक्ष के पत्ते पर, पत्ता पर भगवान एकदम शिशु आयु में, शिशु रूप में, जिस तरह इस 3 महीने के भगवान थे उससे भी छोटे एक वट वृक्ष में भगवान शिशु रूप में उनको, वो पानी में वट वृक्ष तैर रहा था और उस वट वृक्ष के ऊपर भगवान का दर्शन हुआ। और उस किस मुद्रा में थे भगवान? शिशु के रूप में, और उनका दाएं पांव का अंगूठा उनके मुख में था। प्रभुपाद ने इस स्कंद में चित्र भी बनाया है वृक्ष में तैरते हुए वट वृक्ष के पत्ते पर उस शिशु का, भगवान कृष्ण का। तो उस भगवान कृष्ण का और शिशु का उस मार्कंडेय ऋषि ने वट वृक्ष के ऊपर तैरते हुए दर्शन किया और दर्शन करते ही वो प्रार्थना करने लगे तो कम सतत प्रेम सुधा स्मितेन। मार्कंडेय ऋषि ने उस भगवान का दर्शन किया। किस है? भगवान मंद मंद मुस्का रहे थे। एक तो उनका चरण का अंगूठा उनके मुख में था और साथ साथ में वो मुस्का रहे थे। निरीक्षितो अपांग निरीक्षणेन, इस प्रकार उस निरीक्षण किया और निरीक्ष देखा मार्कंडेय ऋषि ने, और मार्कंडेय ऋषि ने उस प्रकार देखा तो स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो मार्कंडेय ऋषि का आँख खुल गए। आँख खुलते ही पूरा ब्रह्मांड में जो जल था वो सब गायब हो गए और जहाँ जिस स्थान पर था वही स्थान पर मार्कंडेय ऋषि आ गए। तो इस प्रकार भगवान शिशु के रूप में मार्कंडेय ऋषि को भी दर्शन किए और वो स्थान, वो द्वीप, हम नवद्वीप परिक्रमा करते हैं, गोद्रुम द्वीप, वो स्थान है आज भी। कहा जाता है कि शास्त्र में वर्णन भी है कि भगवान का जो धाम होता है वो शाश्वत होता है, वो कभी प्रलय में उनका प्रभाव नहीं पड़ता, वो नष्ट नहीं होते हैं। वृंदावन या नवद्वीप धाम हो या क्षेत्र धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी में जो धाम है वो प्रलय में ब्रह्मांड का नाश होता है लेकिन वो धाम का नाश नहीं होता क्योंकि वो शाश्वत है, भगवान का दिव्य धाम है। तो उस नवद्वीप धाम में जो गोद्रुम द्वीप है वो गोद्रुम द्वीप, वही मार्कंडेय ऋषि उस द्वीप में गाय का दूध पिए थे, सूर्य गाय। तो गोद्रुम द्वीप इसी का नाम है, जो गो मतलब गाय, द्रुम मतलब वृक्ष, द्वीप मतलब टापू। उसी टापू पर मार्कंडेय ऋषि वहाँ रुके थे और पूरे जल से वो बसे थे। वो नवद्वीप धाम में जो गोद्रुम द्वीप है जहाँ भक्तिनाथ ठाकुर महाराज का निवास स्थान है, वही स्थान पर मार्कंडेय ऋषि वहाँ इस ब्रह्मांड से जल से भरे हुए थे, वहीं पर वो आश्रय लिए थे। तो इसी प्रकार भगवान शिशु के रूप में मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए थे, जिस प्रकार इस श्लोक में है, आज के श्लोक में है। तो भगवान के कोमल कोमल शरण जो एकदम नए नए पत्ते की एकदम पीले पीले या लाल लाल होते हैं एकदम कोमल, उसी प्रकार भगवान का चरण कमल था। लेकिन उसी इतना कोमल होते हुए भी जब चकट चकट को टच किया तुरंत वो उलट कर टूट गए। इतना भी कोमल हो लेकिन भगवान की शक्ति के कारण वो टूट कर गिर गए। तो इसी प्रकार भगवान की जब ये बाल लीला सुनते हैं और भक्त लोग इसी बाल लीला को सुनकर अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं, और जो भौतिकतावादी जिनकी बुद्धि जड़ है, रूपात लिखते हैं कि जिनकी बुद्धि जड़ है वो इस लीला का आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता कि इनका 3 महीने का शिशु इतना बड़ा संकट कैसे उलट सकता है, वही तर्क लगने में लग जाता है। लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं कि भगवान की शक्ति क्या है, भगवान शायद 6 दिन के हो या 3 महीने के हो वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान कई इस प्रकार बाल लीला का जब भक्त श्रवण करते हैं तो श्रवण के साथ उनका प्रेम बढ़ते हैं भगवान के साथ, और हृदय में जो अनर्थ है वो नष्ट होता है। इस प्रकार भगवान की बाल लीला आगे हम सुनेंगे, और प्रभुपाद की कृपा से जो ये बाल लीला का श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है ये दुर्लभ है, और प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने यही बाल लीला का श्रवण करने के लिए सबसे पहले विदेश में जाकर उसने कृष्ण बुक दिया ताकि सभी लोग, फिर बाद में भगवद गीता दिया, सबसे पहले कृष्णा बुक दिया जो बहुत बड़ी थी उस समय, और पूरा उसमें श्लोक नहीं है पूरा कथा है, एक एक लीला का वर्णन है, और उसमें सार के साथ सिद्धांत के साथ प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है उस कृष्ण बुक को, ताकि लोग कृष्ण लीला जब सुने उस कथा का श्रवण करें ताकि उनका हृदय पवित्र हो, और वैसे ही श्लोक के साथ पढ़ेंगे तो उनको उतनी रुचि नहीं होगी शुरू में, लेकिन जब इस कथा के रूप में जब सुनेंगे तो आगे क्या करेंगे, भगवान आगे कैसी लीला करेंगे सुनने का लालसा बढ़ेगी और पूरी कथा का श्रवण करेंगे। इसी हेतु से जीव का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद ने कृष्ण बुक दिए सर्वप्रथम, और इस कृष्ण बुक को सभी लोग पढ़ते हैं और आनंद से, और प्रभुपाद इसी को कृष्ण भावना में सभी को लगाने के लिए इस तरह एक आचार्य किस तरह जीवों को भगवान की भक्ति में या भगवान के धाम प्राप्त करने का अनेक प्रयास या प्रयत्न करते रहते हैं। तो प्रभुपाद एक समय लंदन में जब सुबह के समय मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो उस मॉर्निंग वॉक में अपने शिष्यों के साथ उस गार्डन में चल रहे थे, तो उस गार्डन में प्रभुपाद ने नीचे देखा, तो नीचे देखा तो वहाँ जो घास था थोड़ा कोमल कोमल घास, कहीं घास येलो कलर के थे और कहीं घास एकदम हरा हरा कलर के थे, तो हरा हरा कलर के थे और कहीं घास येलो कलर के थे। तो प्रभुपाद ने पूछा इस तरह ये दो विभिन्न प्रकार के घास क्यों है, तो सब शिष्य देखने लगे, तो कई शिष्यों ने कहा कि जो पीला येलो कलर का पीला कलर का है वो आगे जाके सूख जाएगा क्योंकि उनका पानी नहीं मिलता या उनका वातावरण उनको ठीक नहीं लगता है, जो हरा भरा है वो रहेगा। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो कई सभी भक्तों ने अलग अलग बताया तरीका कि ऐसे ऐसे होता है, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं ऐसा इस स्थिति नहीं है, जो येलो कलर का है उनका जड़ पृथ्वी से टूट गया है छूट गया है, और जो हरा कलर का है उनका जड़ मजबूती है पृथ्वी से, इसलिए वो हरा कलर हरा है वो हरा भरा ही रहेगा, और जो येलो कलर का जो पीला कलर का है वो आगे क्योंकि उनका जड़ पृथ्वी से छूट गया है तो छूटने के कारण वो आगे जाकर सूख जाएगा मुरझा जाएगा और सूख जाएगा और वह नष्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद इसी प्रसंग या इसी बात को लेते हुए शिक्षा दे रहे हैं भक्तों को कि इसी प्रकार जब हम कृष्ण भावना में अपनी जड़ जमाए रखेंगे तब तक हम हरे भरे रहेंगे, हम आनंद प्राप्त कर पाएंगे, और ऐसे ही हमारा जब इस कृष्ण भावना से हमारा जड़ छूट जाएगा या हम छोड़ देंगे तब हम सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद इसी से शिक्षा देते हैं कि हमारे किस तरह कृष्ण भावना में हमें लगना है अपना जड़, या हमें अपना ही रखना है कृष्ण भावना, छोड़ना नहीं है, जब तक हम कृष्ण भावना में रहेंगे तब तक हम सुखी रहेंगे आनंद रहेंगे और हरा भरा रहेंगे, और जिस समय हम कृष्ण भावना छोड़ देंगे तो सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार प्रभुपाद की कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त होता है भगवान कृष्ण की लीला का मधुर आस्वादन करने के लिए। और इस 3 महीने की आयु में भगवान ने चक्रासुर का वध किया, और जो अपने कमल चरणों से चक्रासुर का तस करते हुए पूरा पलट कर गिर गया, और सारे जो बर्तन थे उसमें वो टूट कर जो उसमें रस भरे थे वो सब बिखर गए। तो इस आज का श्लोक में यही है जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण की इतनी मधुर लीला है तो भक्त इन्हीं लीलाओं को सुनकर आस्वादन करते हैं और इसी में आनंद प्राप्त करते। मत चिता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम, भगवद्गीता में भी भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार भक्त आपस में उनकी लीला का श्रवण करते ही आनंद प्राप्त करते हैं, इनके अलावा भक्त का कोई कार्य नहीं होता है। तो इस पवित्र दामोदर मास में भक्त प्रतिदिन इस भागवत कथा का और दामोदर अष्टकम का जो भगवान की लीला का सुंदर रूप से सत्यव्रत मुनि ने वर्णन किया है उसका उच्चारण या गायन करते हैं तो उसी से ही जीव का परम मंगल होता है। और साथ साथ में दीपदान, वो भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए आचार्य ने विधि दिया है। तो इसी दामोदर मास में जो पवित्र मास है 12 मास में, तो इसी मास का हमें लाभ लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपना जीवन सफल करना चाहिए और प्रभुपाद की कृपा से हमें यह प्राप्त होता है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वनमाल प्रभु से पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की। गीता गौर प्रेमानंद।